नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा और उसके अर्थ को बताने के लिए उसने शास्त्री, पंडित, तंत्री, ज्योतिषियों को बुलाया, परंतु वे उसका उत्तर अर्थात अर्थ न बता पाए। तब दानियल ने परमेश्वर के द्वारा से अर्थ को पाकर राजा के सामने उसके स्वप्न और उसके अर्थ को बताने के लिए अपने आप को लाया। मेरे मित्रों, आज हम आगे के अध्ययन में देखेंगे कि किस प्रकार दानियल उस अर्थ को राजा को समझाता है और इसके साथ साथ आगे की घटनाएं क्या होंगी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए हम इससे पहले कि अपने अध्ययन में और अधिक आगे बढ़ें, हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और हम इसे प्रत्येक के जीवन के लिए जिसे आपने हमें दान स्वरूप दिया है और आपने हमें जीवतों के बीच में जीवित रखा है। पिताजी, हम धन्यवादित हैं प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो हमेशा आपके वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर दया दृष्टि करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें ताकि वे भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाएं। आज इस वचन पर अपनी आशीष दें, हम सब से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 44 और 45 पद को पढ़िए। आप निकाल लीजिए दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 44 और 45 पद में इस प्रकार से लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी और पाप के पुरुष के विभिन्न नाम धर्म शास्त्र में दिए गए हैं। वह विश्व शासक होगा जो अपनी इच्छा पूरी करेगा, वह नबूकदनेस्सर के आरंभिक राज्य के स्वरूप राज करेगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यह एक आदर्श सरकार है, परंतु यदि शिखर पर गलत मनुष्य बैठे तो बहुत बुरा होता है। हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर ने ऐसा ही किया था और ख्रिस्त विरोधी के साथ भी ऐसा ही होगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु तानाशाह होगा और वह अपने विरुद्ध खड़े सब विद्रोहियों को अपने अधीन करेगा। भजन संहिता 2 उसके 9 में उसके बारे में लिखा हुआ है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मेरे विचार में तो वह क्षमा याचना का विचार नहीं रखता है। यदि आपको यह बात अच्छी नहीं लगती है तो पृथ्वी का त्याग करके आप चांद पर चले जाएं। वह पृथ्वी पर अपनी प्रभुता करेगा। जी हाँ, यह उसका संसार है। लिखा है, एक पत्थर किसी के हाथ से बिन खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। यह पत्थर और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। वह मात्र मनुष्य ही नहीं, परमेश्वर का अभिषिक्त है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि वही यह पत्थर है। उसके युग में उसकी बातों को समझने वाले आज के समझने वालों से अधिक हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु ने कहा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। जी हाँ, वही यह पत्थर है, जीवित पत्थर, कोने का पत्थर। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे मित्रों, यदि आप उस पत्थर पर गिरकर अर्थात विश्वास द्वारा आश्रित होते हैं तो एक भी बार याचना किए बिना जैसे हैं वैसे ही आप आ जाएं। उसका लहू आपके लिए बहा है, आप चूर चूर हो गए हैं, आप उसके पास एक पापी होकर आते हैं, आपके पास उसे देने को कुछ भी नहीं है। वह निर्भर करने के लिए एक महान पत्थर है। मेरे मित्रों, धर्म शास्त्र में पत्थर प्रभु यीशु के पद, उद्धारकर्ता और न्यायी के अनेक प्रतीकों में से एक है। व्यवस्था विवरण में वह उद्धार की चट्टान है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 4 पद में वह न्याय की चट्टान कहा गया है। दानियल की पुस्तक के ये पद उस समय की चर्चा करते हैं जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर न्याय करने आएगा और पृथ्वी के विरुद्ध सब विद्रोह का दमन करेगा। यहां प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में कहा गया है, जिसका सविस्तार वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से 21 पद में दिया गया है। उसका द्वितीय आगमन उथल पुथल और विलाप के साथ होगा, जिसका धर्म शास्त्र में बार बार उल्लेख किया गया है। आप देखिए जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 से 3 पद में, यवेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में और 9 से 16 पद में, यशाया की पुस्तक 34 अध्याय और उसके 1 से 8 पद में और तब भजन संहिता 2 अध्याय में ये सारे बातें उल्लेखित हैं। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर राज्य करने और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की मनुष्य की गरोती इस सभ्यता के अंधकारपूर्ण विनाश में डूब जाएगी। हमारे लिए अंतर ग्रहण करना कठिन है कि हम दंडाधीन जगत में वास करते हैं। यह जगत न्यायाधीन नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बचने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे मित्र, क्या आपके पास अभी अवसर नहीं है? आप खोए हुए हैं, आप परमेश्वर से रहित हैं, आप में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है। आपके मन में जो है वह केवल धर्म नाम की एक छोटी सी अभिलाषा है। आप संडे स्कूल के पदक प्राप्त करना चाहते हैं, आप रविवारीय आराधना से चूकना नहीं चाहते हैं, परंतु मेरे मित्रों आवश्यक तो यह है कि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। और निश्चय ही यह काम आसान नहीं है। उसे दंडवत करके उसकी प्रभुता को स्वीकार करना आसान नहीं है। अतः होगा यह कि या तो आप उस पत्थर पर आ जाएं या वह पत्थर आप पर गिरे। मैं तो उस पर आना चाहूंगा। जी हां, परमेश्वर मनुष्य के इस छोटे से दिन को यहां समाप्त कर देगा। परमेश्वर का राज्य सर्वोपरि होगा और 1000 वर्ष तक पृथ्वी प्रभु यीशु के अपने शासनाधीन परखी जाएगी। परमेश्वर की धर्मी राज्य पर पाप के अंतिम प्रहार के क्षणों के बाद प्रभु राज अनंत काल तक चलता रहेगा। आप इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20 पद में पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 46 और 47 पद में। यहां पर लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दानियल के अर्थ बताने का नबूकदनेस्सर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने दानियल को मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसकी उपासना की जाए। आप ध्यान दीजिए कि नबूकदनेस्सर राजा है और वह दानियल को दंडवत कर रहा है। वह तो भौतिक वस्तुओं की उपासना से अधिक और कुछ नहीं जानता था, परंतु दानियल की उपासना करके वह जीवित परमेश्वर को श्रद्धा अर्पित करना चाहता था। स्वर्ग के परमेश्वर से यह उसका आरंभिक परिचय है। इस पुस्तक में आप इस मूर्ति पूजक राजा के मन में विश्वास को अंकुरित होते और विकसित होते हुए देखते हैं। यह अन्य जाति विश्वास के अंधकार को चीरेगा और परमेश्वर के ज्ञान के अद्भुत प्रकाश में प्रवेश करेगा। ये हम पढ़ें दानियल 2 अध्याय उसके 48 और 49 पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल की विनती करने से राजा ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। राजा के फाटकों में बैठना धर्मशास्त्र में अन्य स्थान में भी आया है। उत्पत्ति में लूत के बारे में कहा गया है कि वह सदोम नगर के फाटक में बैठा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक न्यायी था। एस्तेर की पुस्तक में मोर्दकै को भी यह पद दिया गया था। मेरे मित्रों, नबूकदनेस्सर ने दानियल को प्रतिफल दिया और उसकी प्रतिष्ठा भी की, परंतु दानियल अपने 3 साथियों को नहीं भूला। उन्हें भी बेबीलोन के प्रशासन में ऊंचा पद प्रदान किए गए। यह युवक दानियल अब न्यायी बन गया था, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, परंतु वह बेबीलोन का प्रधानमंत्री भी था। इससे संपूर्ण पुस्तक में हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर उससे परामर्श लेता था, वह प्रजा का न्याय करता था और देश के प्रधानमंत्री होने का कार्यभार भी संभालता था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दानियल पर परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का स्वप्न प्रकट किया और उसने स्वप्न तथा उसका अर्थ उसे सुनाया, परंतु परमेश्वर को सम्मान प्रदान करते हुए कहा था कि मनुष्य के लिए तो असंभव हो सकता है परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के लिए नहीं। हम देखेंगे कि दानियल के प्रभाव के द्वारा नबूकदनेस्सर, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, शनय शनय अर्थात धीरे धीरे परमेश्वर को और उसके ज्ञान को अंतर्ग्रहण कर रहा है। आइए हम अध्याय 3 के विषय को देखें, नबूकदनेस्सर द्वारा मूर्ति पूजा की आज्ञा, और हम आगे देखते हैं स्वर्ण मूर्ति को दंडवत न करने के कारण 3 इब्रानियों का दहन। दानियल की पुस्तक के प्रथम अध्याय में अन्य जातीय प्रथाओं को दंड दिया गया है और अध्याय 2 में अन्य जाति विचारों का न्याय किया गया है तथा अध्याय 3 में अन्य जाति अभिमान का न्याय किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं स्वर्ण मूर्ति की रचना। दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं, जो उसने खड़ी कराई थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोने की एक मूरत, इससे प्रभावशाली मूर्ति की रचना में लागत और शिल्पकारी यहाँ प्रकट है। कुछ विचारकों का सोचना है कि यह मूर्ति उसने अपने पिता की स्मृति में बनवाई थी, जिसका नाम नेबूपोलसर था। कुछ का कहना है कि यह उसके देवता बेला की मूर्ति थी, परंतु संभावना अधिक यह है कि उसने स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। दानियल ने उसके स्वप्न के अर्थ में उसे यह तो बता ही दिया था कि वह सबसे महान राजा है और होगा। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनने की अपेक्षा नबूकदनेस्सर स्वप्न का अर्थ जानकर घमंड से भर गया। उसने अब सोने की पूरी मूर्ति ही बनवा डाली जो उसके राज्य का प्रतीक थी। मेरे प्रियो, यह मूर्ति 90 फुट लंबी और 90 फुट चौड़ी थी। बेबीलोन समतल स्थान में था, यद्यपि उसके युग के अनुसार वह नगर गगनचुंबी इमारतों से घिरा हुआ था। उस मूर्ति की ऊंचाई के कारण वह दूर ही से दिखाई देती थी। समतल भूभाग असंख्य मनुष्यों के लिए पर्याप्त था कि उपस्थित होकर उस मूर्ति की, तो क्या पार्श्वों में नबूकदनेस्सर की भी पूजा करें। उस मूर्ति के समर्पण अर्थात स्थापना दिवस पर सब सरकारी कर्मचारी और अगुए वहां एकत्र थे। वे सब उच्च पदाधिकारी थे और यह बहकावे का प्रथम चरण था। ये राजसी पदाधिकारी असंख्य थे। इस मूर्ति को बनाने के पीछे नबूकदनेस्सर के मन में क्या था, हम 3 बातों को देखते हैं। पहला, स्वर्ग के परमेश्वर से विद्रोह। परमेश्वर ने उसे महान साम्राज्य दिया जिसके प्रति आभारी होने की अपेक्षा वह विद्रोह कर रहा था। दूसरी बात, उसका घमंड, यह उसका अपने आप को ईश्वर कहने का एक तरीका था। आगे चल करके हम देखेंगे कि रोम के राजाओं ने भी ऐसा ही किया है। तीसरी बात, वह अपने साम्राज्य में जातियां, भाषाएं और मनुष्य को परस्पर जोड़ना चाहता था कि उसका देश एक व्यापक राष्ट्र हो। दूसरे शब्दों में वह एक वैश्विक धर्म की स्थापना करना चाहता था। यह बेबीलोन के गुम्मट निर्माण का ही एक रूप था, संपूर्ण संसार में एक ही धर्म की स्थापना। मेरे मित्रों, आज भी अनेक जन वैश्विक धर्म के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की कलीसियाएं। मेरे मित्रों, वे प्रभु यीशु को बाहर कर देंगे। यह प्रयास जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना के निमित्त नहीं है। वे तो वास्तव में परमेश्वर विरोधी हैं। यह एक ऐसा अभियान है जो महाक्लेश पाप के मनुष्य की ओर अग्रसर है। सच्ची कलीसिया अर्थात विश्वासियों की देह तो पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। विश्वासियों में रंग भेद नहीं होगा, कलीसियाई वर्गों में भेद नहीं होगा। मसीह यीशु का प्रत्येक विश्वासी उठा लिया जाएगा, सब साथ जाएंगे और कोई भी जाति और रंग भेद नहीं होगा। दानियल नबी की पुस्तक 3:3 में लिखा है, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। मेरे मित्रों, यहां पर आप ध्यान दीजिए, समर्पण का दिन आ चुका था। दानियल को छोड़ सब वहां उपस्थित थे। हम मानते हैं कि उसकी अनुपस्थिति का उचित एवं वैध कारण था। शायद वह सरकारी काम से बाहर गया हुआ था। उसका स्थान बेजोड़ था। वह दिशा शासक का परामर्शदाता भी था। मूर्ति अति प्रभावशाली दिख रही थी और देखने वालों पर उसका आकर्षण मनों को मुग्ध कर रहा था। मेरे मित्रों, ऐसे समय में दानियल उपस्थित नहीं था। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से समय के अनुसार उन्हें बचाता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि सब अधिकारी उपस्थित हैं परंतु दानियल उपस्थित नहीं है। इसका कारण यही हम पाएंगे कि वह परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर के भय में जीवन जीना चाहता है। मेरे मित्रों, यहां पर आपके लिए और मेरे लिए भी एक चुनौती है कि हम ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं। क्या आज हम परमेश्वर के लिए स्थिर रहने के लिए तैयार हैं, या हम क्या हम परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने के लिए भी तैयार हैं? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको दानियल के द्वारा से सीखने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि इसके पश्चात दानियल के साथ क्या होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो उसके गुण गाऊंगा नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो उसके गुण गाऊंगा मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में फिसले ना कभी कदम राहों मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा बचाएगा रक्षक बनकर प्राण संभालेगा कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा